इसको सीखेंगे। वार्ता भी हो रही है भगवान में और जदु महाराज में, और इधर वार्ता हो रही है तो भगवान में और उद्धव जी में, उधर सुखदेव गोस्वामी में और परीक्षित महाराज में। यह ऐसा विषय है कि वास्तव में जो साधना किया है, जो आत्मा के विषय में बहुत बहुत सुना है, देह से पृथक अवस्थिति को जानता है, वही व्यक्ति इसको समझ पाएगा। लेकिन यह शिक्षा वायु से मिलती है, शरीर से आत्मा अनाशक्त है, पृथक है। आत्मा तो इस तरह से है ही, लेकिन आत्मदृक जो व्यक्ति आत्मदृक हो गया है, योगी का विशेषण है आत्मदृक योगी, जो आत्मा को देख रहा है, आत्मा को शरीर के धर्मों से शान कर नहीं देख रहा है, उपाधि से हीन करके जो अपने को देख रहा है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं चिन्मय हूँ और मैं शरीर में अवस्थित हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो इस तरह का योगी जानता है कि है आत्मा, यद्यपि स्वयं शरीर के धर्मों का आश्रय है, शरीर इसी पर टिका हुआ है, फिर भी यह शरीर नहीं है। देहेशु प्रविष्ट है अपि, और देहेशु का विशेषण दे रहे हैं पार्थिवेश, पृथ्वी का विकार है देह, विविध देह में आत्मा जाता है, लेकिन आत्मा उस शरीर के स्वभाव के अनुसार हो नहीं जाता, वो उसे पृथक है। तो आत्मदृक योगी इसको समझता है, जैसे शरीर में कई धर्म प्रकाशित होते हैं, यह धर्म का अर्थ बचपन जवानी, इसको स्वभाव कहते हैं। शरीर बचपन में छोटा रहता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है, जल जाता है, मिट्टी में चला जाता है। तो आत्मा इस तरह से नहीं है, चाहे शरीर बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लेकिन आत्मा इस तरह से बच्चा जवान बूढ़ा नहीं होता है, वो जैसा है वैसा है, शरीर बदलेगा। और देह के जो धर्म है, स्वभाव है, वो आत्मा की उपस्थिति के कारण, इसलिए तद गुणाश्रय, देह के गुणों का, धर्मों का यह आश्रय है, इसी के कारण बचपन आ रही है या जवानी आ रही है, बुढ़ापा आ रही है, आत्मा है तब। यदि आत्मा छोड़ करके चला जाए तो शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन होगा ही नहीं, जैसा शरीर रहेगा वैसा रहेगा। जैसे कोई वृक्ष है, उसे आत्मा निकल जाता है तो वृक्ष वहीं पर ठूठ बन करके रह जाता है, अब वृक्ष बढ़ता नहीं है। तो वृक्ष का बढ़ना, फल फूल देना, जैसे आत्मा पर निर्भर है, चेतना पर निर्भर है, उसी तरह से हमारा शरीर है, शरीर में बढ़ना घटना क्षीण होना जो कुछ भी है, वो आत्मा है तब हो रहा है, परंतु फिर भी शरीर के धर्मों से आत्मा लिप्त नहीं है, वही से पृथक। आत्मा का दूसरा स्वभाव है, शरीर का दूसरा स्वभाव है। तो आत्मदृक योगी इस प्रकार गुणों से लिप्त नहीं होता है, वह शरीर से परे रहता है। यद्यपि तद गुणाश्रय का अर्थ है कि वो प्रयोग करता है इस शब्द का, वो भी कहता है शरीर को मैं, परिवार को या आश्रम को मेरा कहता है, लेकिन कहता भर है। जैसे ड्रामा में, नाटक में लोग एक दूसरे को अपना संबंधी कहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ हमारा कोई बेटा नहीं है, कोई शत्रु नहीं। जैसे हम लोग पहले नाटक करते थे, रामलीला करते थे, तो कोई रावण बनता था, कोई हनुमान जी बनता था, बोलने मान लीजिए रावण बोल रहा है, अरे मूर्ख बंदर तू क्या बक रहा, मेरी समता का दुनिया में कोई नहीं। रावण कहता है हनुमान जी, और रावण ही उस लीला का सूत्रधार। हो सकता है कि अपना खास मित्र हनुमान जी बना हुआ है, लेकिन उसको अरे मूर्ख बंदर तू क्या बक रहा है इस तरह बोल, और वह कहते समय भी इतना मालूम है उस रावण बने हुए व्यक्ति को कि मैं रावण नहीं हूं और यह हनुमान नहीं है, फिर व्यवहार करता है। व्यवहार में तो आओ युद्ध होता है, लेकिन युद्ध नाटक है, नकली है। इसी तरह से देह से मुक्त पुरुष भी देह के अनुसार व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन वो पूरा मुक्त। नेपथ्य में आते हैं, उन्हें ड्रेस बदल उसने देर नहीं लगते, फिर अपना वही फुल पैंट धोती कोट और मुकुट सब उतर जाते हैं बनावटी। तो वो भी कहीं किसी के पास जाते हैं, आते हैं, घूमते हैं, तो वहां पर ऐसा व्यवहार करते हैं, लगता है अरे ये तो विषय हो गया, ये हो गया, वैसे हो गया, लेकिन वो मुक्त होता है शरीर बाहर ही नहीं, शरीर से भी, शरीर से बिल्कुल मुक्त होता है। किस तरह से? जैसे वायु गंध से अलग, गंधवान प्रतीत होता है वायु, प्रतीति ऐसी होगी कि गंध में हवा में सुगंध है, ये है वो है, वही, लेकिन वो बिल्कुल पृथक है। वो जो गंध है वो वायु का नहीं है, वायु का उत्पादन नहीं, वायु परिणत नहीं हुआ है गंध के रूप में, गंध वह पृथ्वी का है और वायु से अलग है। तो इसी तरह से जो देह है यह पार्थिव है, यह भी पृथ्वी का है, और आत्मा क्या है? ममई वांश जीव, वह चिदघन भगवान का अंश है, वह इस पृथ्वी का नहीं है। इस चेतना में जोगी हमेशा बना रहता है, ये वायु से सीखना चाहिए जोगी। आत्मदृक योगी गुणैर न युज्यते। हम लोग भी हवा का बहना, सुगंध या दुर्गंध का अनुभव करते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि गुरु हमको ये शिक्षा दे रहा है। तो पृथ्वी वायु आकाशम, पृथ्वी से तीन शिक्षा लिए, क्षमा, परात्मता और परोपकारिता, पर्वत और वृक्ष। वायु से क्या क्या सीखे? संतोष, प्राण वायु से संतोष सीखे, और बाह्य वायु से कहीं भी अनाशक्ति नहीं, और एक और बाह्य वायु से शिक्षा सीख रहे हैं पुष्पों के गंध आदि के संबंध से कि आत्मा देह से बिल्कुल भिन्न चीज है। यद्यपि वो प्रतीत होता है देहवान, देह जैसा, लेकिन वास्तव में देह से परे है। तो मुक्त योगी इस तरह से देखते हैं। अंतरहितश्च स्थिर जंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्त्या विवच्छेदम संगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावे। तो वायु से शिक्षा हो गई, अब आकाश से भी कुछ सीख लें। ठीक है, नहीं बंद करते हैं, ये पूरा नहीं कर पाएंगे आकाश की शिक्षा। तो पृथ्वी से और वायु से जो शिक्षाएं मिली हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, और आगे 22 गुरुओं की लाइन अभी लगी है। हरे कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पृथ्वी वायुराकाशम् आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतोज्गरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शर्कृत सर्पः पूर्णनाभिः सुपेशकृत धीरो दैव वशानुगैः तद्विद्वान् चलेत् मार्गात् अन्वशिक्षं क्षितैर्व्रतम् सस्वत्पराः सर्वेहः परार्थैकान्तसम्भवः साधु शिक्षेत भूभृतः नवशिष्यः परात्मताम् प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः
ज्ञानम यथा न नश्येत नावकीर्जेत वाङ्मनः विषयेष्वाविसंयोगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत् पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक् अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेदमसङ्गमात्मन मुनिर्नभस्त्वम् विततस्य भावये तेजो वन्नमयैर्भावैः मेघाद्यैर्वायुनेरितैः नास्पृश्यते नभस्तद्वाद् कालश्रेष्ठैः गुणैः पुमान्। अब जल से क्या शिक्षा मिलती है बता रहे हैं। स्वच्छ प्रकृति स्निग्ध माधुर्यस्तीर्थ भूमृणाम मुनि पुनात्पा मित्रम इच्छोपस्पर्श कीर्तन ही। अग्नि से शिक्षा तेजस्वी तपसा दित्तो दुर्धर्षो दर्भाजनः सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा न दत्ते मलमग्निवाद् क्वचित् छन्नः क्वचित् स्पष्टः उपास्यः श्रेय इच्छताम् भुङ्क्ते सर्वत्र दात्रीणाम् दहन् प्रागुत्तराशुभम् स्वमायया सृष्टमिदम् सदसल्लक्षणम् विभुः प्रविष्टा ईयते तत्तत् स्वरूपोऽग्निरिवैधसि। चन्द्रमासे विसर्गाद्यः श्मशानान्तः भावादेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेन व्यक्तवर्त्मना। पुनः अग्रेश शिक्षा कालेन योगवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ नित्यावपि न दृश्येते आत्मनिर्गथार्चिषा। अब सूर्य से शिक्षा गुणे गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चते नतेषु युज्यते योगी गोभिर्गायिव गोपतिः बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थाय तद्गतः लक्षते स्थूलमतिभिः आत्मा चावस्थितो कवात्। अंतरहितः भीतर स्थित च और बाहर भी स्थिरजन गणेशु अचर और चर में एक जगह स्थित रहने वाले पदार्थों में और चलने वाले पदार्थों में ब्रह्मा ब्रह्म भगवान आत्मभावेना अपने मन के भाव से समन्वयेना जो ब्रह्म तक पहुंचता है उसके द्वारा व्याप्त्या व्याप्ति द्वारा अव्यवच्छेदं परिच्छिन्नता शून्यता असंगम और असंग आत्मनः भगवान का मुनि ही मननशील व्यक्ति नभस्त्वां नभतुल्यत्व आकाश के गुण को वितत्स्या व्यापक के भावये भावना करे। यह श्लोक बहुत कठिन है, इसके दो अर्थ हैं, एक ईश्वर परक भगवान परक और दूसरा जीव परक। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के यहाँ जीव परक ही आप लिखे। आकाशात शिक्षितम संभावना द्वयम आह अंतरहितस्चेति द्वयेन। अब यहाँ भगवान दत्तात्रेय आकाश से जो शिक्षा लिए हैं उसको बता रहे हैं। इस श्लोक में दो संभावना की शिक्षा लिए हैं। संभावना जैसा आपने सुना था पहले असंभावना विपरीत भावना, और इसमें है संभावना। असंभावना का अर्थ है कि ब्रह्म है ही नहीं, सिद्ध पदार्थ नहीं है, केवल जड़ पदार्थ। और विपरीत भावना का अर्थ है कि ब्रह्म है लेकिन वैसा नहीं है जैसा शास्त्रों में लिखा है, कुछ भी नहीं। परंतु संभावना का अर्थ होता है ब्रह्म के स्वरूप गुण को ठीक से समझना, तो संभावना का। संभावना का संस्कृत में अर्थ होता है सम्यक स्थिति, संभाव। संभावना मतलब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉसिबिलिटी या उर्दू में उम्मीद, ये अर्थ नहीं होता है। संभाव का अर्थ है सम्यक स्थिति। तो दो संभावना का ज्ञान इसमें मिलता है ब्रह्म के अस्तित्व आकाश से। क्या क्या? एक तो अव्यवच्छेद और दूसरा असंग। तो पहले आत्मा के अर्थ में इसको लिया जाए। आत्मा चर और अचर दोनों में अस्थित रहता है, अंतरहित च स्थिर जन्म में। मतलब देह में प्रविष्ट होने पर भी मुनि को चाहिए कि वह विवेक से सर्वव्यापक आत्मा के अपने को स्थिर जन्म में सुसमन्वये न वह देखे कि स्थिर है, माने अचर और चर सभी पदार्थों में
मैं व्याप्त हूँ, और व्याप्त हो करके भी आकाश की तरह परिच्छेद रहित हूँ और असंग हूँ। परिच्छेद का अर्थ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लंबाई चौड़ाई मोटाई या आयतन वर्गाकार ये सब कुछ नहीं। आकाश वास्तव में कुछ नहीं है, वस्तुएं इसमें रखी जाती है, जैसे चित्रकार रखा गया है, तकिया रखा गया है, तो इतना दूर आकाश कटा हुआ है, लेकिन वास्तव में कटा हुआ नहीं है। जब ही तकिया को हटा देते हैं पूरा आकाश वहां दे करते हैं, तो जब यह है उस समय भी आकाश कटा नहीं है, और हटा देंगे तो बनेगा नहीं, जो कहते हैं इसको अव्यवच्छेद। आकाश है, इसमें अब बीच में घर उठा दिए या कुतुब मीनार बना दिए, इसका मतलब नहीं कि उतना दूर आकाश कट गया, आकाश रहेगा। अच्छा, और दूसरी असंगता कि आकाश में कोई भी वस्तु आवे, चाहे बर्फ आवे, चाहे आग आवे, चाहे कोई वस्तु आवे, उन वस्तुओं के स्पर्श से आकाश अशुद्ध नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम मांस का लोथड़ा रख दिया गया, लटका दिया गया तो आकाश अशुद्ध हो गया। आकाश निर्लिप्त है, इसको असंग कहते हैं। इसी प्रकार से आत्मा विविध शरीर में रहता है, विविध जगह पर जाता है, लेकिन वास्तव में प्राकृत वस्तुओं से आत्मा में कोई कटाव छटाव नहीं होता है, और न तो वह कहीं सटता है। वास्तव में देह आदमी असंगो है यम आत्मा, यह आत्मा असंग है और अपरिच्छेद। अच्छा, इसका ब्रह्मात्म भावे न आत्मन न भस्त्वम भावे, आत्मन मानी जीव का, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से मेरा ऐक्य है, इस भाव से नभस्त्वम नभतुल्यत्वम भावे, लेकिन ये अर्थ बैठता नहीं है मन में, अंततः इसका अर्थ भगवत परक ही होगा, लेकिन भगवत परक अर्थ करने में फिर अन्वय ठीक से हमारी समझ में नहीं आ रहा है, भाव तो समझ में आ रहा है। यहाँ भावेत शब्द से यह कहा गया है, ये भावना करनी चाहिए किसको, मुनि को। प्रथम भूत मुनि अंतरहित, जो देह में अस्थित है उस मुनि को भावना करनी चाहिए। क्या भावना? वितपस्य आत्मन, व्यापक आत्मा के नभस्त्व नभतुल्यता की भावना करनी चाहिए। आत्मा कहाँ व्याप्त है? स्थिर जंगल में सु क्या भावना करनी चाहिए? नभ नभ नभस्त्वम क्या है? अव्यवच्छेद और असंग, ठीक है। तो क्या हु बहु आत्मा आकाश ही है? नहीं नहीं, ब्रह्मात्म भावे में संबंधित है, ब्रह्मात्म भाव। चार अचर सभी वस्तुओं में भावना करनी चाहिए कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। सर्वम खल इदम ब्रह्म, समन्वेति इति समन्वय, जो समाया हो किसी वस्तु में उसको समन्वय कहते हैं। इस भाव से कि ब्रह्म है, जगत के रूप में परिणत है और वह ब्रह्ममय है, इस तरह से अपने को असंग और अविच्छेद अपरिच्छिन्न देखे। लेकिन जीव को इस तरह से कोई देखना चालू करे कि मैं ही सब जगह समाया हूं और मेरी ही अभिव्यक्ति जगत है, यह पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इसका सही अर्थ देखिए, अणुर्ेश आत्मा इत्यादि श्रुति प्रतिपादित अन्वयन, यहाँ समन्वय का अर्थ ये हुआ, समन्वयन समन्वय के द्वारा अपने समन्वय के द्वारा भगवान को देखे। आत्मनः नभस्त्वं भावे, आत्मा माने परमात्मा के नभस्त्वं आकाश जैसी, नभ जैसी असंगता को, अपरिच्छेद को सोचे, इसका ही अर्थ है। तो समन्वय का क्या अर्थ है? समन्वय का अर्थ है कि अणुर ही ऐसा आत्मा इत्यादि श्रुति प्रतिपादित अन्वयेन सर्वव्याप्य संभवात अणु स्वरूप से व्यापक स्वरूप है कि भावना की निदर्थिक अन्वय करके देखे। तो श्रीपद श्रीधर स्वामी जी की टीका कोई काट रहे हैं, काट नहीं रहे, वास्तव में एक लाइन निकलते जी गोस्वामी जी और श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी भी इसका अर्थ भगवत पर किए। सिद्धांत प्रदीप में श्रील सुखदेव टीकाकार हैं, वे कहते हैं कि अणुर ही एस आत्मा, जहां जीवात्मा का वर्णन किया गया है तो वहां कहा गया है यह अणु है। तो जो अणु है उसके लिए सर्वव्याप्ति असंभव है। जीव के लिए कभी भी नहीं कहा गया है कि अणु रणीयन महतो महीयन, भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान अणु से अणु है और महान से महान है, लेकिन जीव के लिए हमेशा यही बात कही गई है कि अणु है, छोटा है। तो जो अणु है वह सब जगह व्याप्त नहीं हो सकता है। तो अणु स्वरूपस्य और व्यापक स्वरूपस्य की भावना भी निरर्थिका अवश्य। तो कोई कहे कि ठीक है आत्मा जीव अणु है, लेकिन इसको व्यापक ब्रह्म के साथ आय के भावना करने में क्या दोष है? जीव को अगर यह कोई सोचे कि मैं भगवान हूं तो क्या हानि है? तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि यह जो भावना है वो निरर्थिका है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। नहीं परमाणुर मेरु भवन या मेरुर भवति, एक परम अणु धूलि का कण नहीं कहीं नीचे गिरा है और उसको कोई कह दे कि तुम भावना करो कि मैं मेरु पर्वत हूं, तो भावना करने से मेरु पर्वत हो जाएगा। भावना करने के लिए वह बात कही जाती है जो सत्य है, जो स्वतः सिद्ध है, उसी का रियलाइजेशन किया जाता है, मन में देखा जाता है, इसको भावना कहते हैं। भावना का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम उल्टा भावना करे। नहीं मेरु, नहीं परमाणु मेरुर भावना या मेरुर भवती। अब कोई मूस है और उसको कोई कहे तुम भावना करो कि मैं पहाड़ हूं क्योंकि मैं मोटा हो गया हूं, तो मूस मोटा ही लोढ़ा है, लोढ़ा होगा ज्यादा से ज्यादा भावना कर, और क्या होगा? जीव की भावना की जाए कि आकाश की तरह परिच्छेद रहित है और निर्लिप्त है, असंग है, ये है वो, ये बात बैठती नहीं। वास्तव में भगवान के लिए यह ज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, तत्वमसीति वाक्यम तु अंश भूतस्य आत्मनो अंशिक पृथक अवस्थाना भावात अवस्थाना भेदम वदति न तु स्वरूपतः ऐक्यम अन्यथा सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति अनेनापि सर्वस्य चेतना चेतनस्य स्वरूपैक्यं प्रसज्य। तब कोई तर्क करे कि यह वेद में क्यों लिखा जाए कि तत्वमसी वह तुम हो, तत्वमसी तत्व का अर्थ है वह और त्वम असी, पहले भगवान का वर्णन किया गया है वेदों में और जीव जो सुन रहा है वेद के वाक्य को उससे गुरु कहता है कि तत् त्वम असी, ऐसा क्यों कहा गया? यहां तत्व का वैसे वास्तविक अर्थ हुआ तस्य त्वम असी, जैसे तत्पर भव अगर कहा जाए तो इसका अर्थ ही नहीं होगा कि तुम वही हो जाओ, तुम उसका भक्त हो जाओ, उसका परायण हो जाओ। ऐसे हम सुंदर खड़ा है, खड़ा है, चलिए खड़ा है। तस्य त्वम असि तत्त्वम असि। अगर वीरदास जी आप भी सावधान रहिए। तत्त्वम असि तुम वही हो, यह भी अर्थ ठीक है, और तस्य त्वम असि यह भी अर्थ ठीक है। तो तत्त्वम असि तुम वही हो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हर है, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रह ही नहीं सकते हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग रहे, सूर्य के बिना भी सूर्य की किरण बनी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो पृथक अवस्थान का अभाव है, इसीलिए अवस्थाना भेदम बदलती, अवस्थान में अभेद दिखाने के लिए कि दोनों एक ही, ये दोनों संयुक्त हैं, इसलिए कह दिया जाता है तुम वह हो। तो इसका वास्तविक अर्थ हुआ तस्य त्वम असि, तुम उनके हो, भगवान के हो। अगर यह मान लिया जाए कि जीव भगवान है, तब तो ऐसे अगर इस वाक्य का कि तत्त्वम असि तुम वही हो, अगर यह माना जाए, तब तो सर्वम खलविदम ब्रह्म कह दिया जाए। इसका अर्थ ऐसा मानना पड़ेगा कि सर्वम खलु, सर्वम मतलब चेतन अचेतन जितना पदार्थ है सब ब्रह्म है, और उसमें कोई भेद नहीं है, यह बात माननी पड़ेगी। तो सर्वम खलविदम ब्रह्मैति अनेन अपि सर्वस्य चेतना चेतनस्य स्वरूप ऐक्यम प्रसज्जेता। तब वहां क्या अर्थ करेंगे सर्वम खलविदम ब्रह्म, तब ठीक ठीक अर्थ लगाना पड़ेगा। ओ सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ चित अचित जो भी जगत है वो ब्रह्म की स्वरूप, ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म का अंश, ये सब देख रहे हैं कथा सुनते समय इधर उधर झुरिया झुरिया तो यहां पर वास्तविक अर्थ है भगवान। न चाहे कस्मिन भेद त्रय शून्य सन मात्रे वस्तुनि माया भेदो वस्तुतः को अभेद इति वाच्य। अगर यह कह दिया जाए कि ये कहीं सन वस्तु में, सब वस्तु में माया के द्वारा भेद कर दिया गया है, तो ऐसा होने पर माया की सत्यता को मानना पड़ेगा। मान लीजिए कोई मायावादी यह कहे अद्वैतवादी कि माया ने ब्रह्म में छेद कर दिया, भेद कर दिया, कई खंड में बांट दिया, कई जीव हो गया, तो इसका मतलब कि माया सत्य है, जबकि मायावादी स्वयं कहते हैं कि माया कुछ भी नहीं है। अगर माया की सत्यता को मान लीजिए कि ब्रह्म ने उसने भेद कर दिया है, तो अद्वैत सिद्धांत भंगा पत्ते, अद्वैत सिद्धांत भंग हो जाएगा अपने आप। मिथ्यात्व तो भेदकत्व संभव, और अगर माया को मिथ्या मान लिया जाता है तो भेद करने में संभव नहीं है, तो ऐसे भी भेद नहीं हो सकता। वास्तव में ब्रह्म ही कट छट करके जीव नहीं हो गया है, उसकी शक्ति जीव के रूप में परिणत है। अगर माया को मिथ्या मान लेते हैं तो ऐसे भी वो भेद करने में, ब्रह्म को बांटने में असमर्थ है। तो अनिर्वचनीयत्व है माया भ्रांतत्व, मायावाद में भ्रांतत्व तन्मुखे नहीं वस्या। इस प्रकार से अनिर्वचनीय, अगर ये कह दें, अगर मायावादी ये कह दे कि माया अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता कि मिथ्या है कि सत्य है कि क्या है, तो ऐसा कह देने पर तब तो मायावादियों की भ्रांति अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि माया को भी नहीं जानते हैं। अनिर्वचनीय कह देना मतलब भ्रांत, तो अपने मुख से ही मायावादी अपनी भ्रांतता को स्वीकार कर लेंगे। विशेष रूप से यदि मायावाद निराश को देखना हो तो हमारे ग्रंथ में देखिए, मायावाद निराकरण विस्तर पराभि मताध्यास गिरि वज्रे द्रष्टव्य। एक उन्होंने पुस्तक लिखा है जिसके उसका नाम है पर अभिमत अध्यास गिरि वज्र। वैष्णव मत के अलावा मायावाद को स्वीकार करते हैं, परमत कहते हैं, परमत वो केवल अभ्यास मात्र है। तो तो परमत के अभ्यास रूपी पर्वत पर वज्र ऐसे बहुत प्रसिद्ध मत है, वो पर्वत के समान है, लेकिन वज्र मार दिए जाने पर पर्वत भी चूर चूर हो जाता है। वैसे श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपनी टीका में कभी कभी मायावाद की बात इसलिए दिए हैं कि मायावादी भी भागवत पढ़े कुछ खुश रहे। नहीं, अद्वैतवादी हैं, उनकी टीका से प्रकट होता है। लेकिन जैसे सुखदेव गोस्वामी कभी कभी चारा दिए हैं सभा में बैठे हुए अद्वैतवादियों के लिए, इसलिए चलो कभी कभी उनको भी दे देना चाहिए कि अपनी भावना करे कि मैं आकाश की तरह व्यापक चर अचर में बिल्कुल असंग और अपरिच्छेद, इस तरह की भावना करने ठीक लिखा है उन्होंने सिद्धांत प्रदीप में कि या अणु भावना करने से मेरु हो जाएगा। एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ गली में फेंका हुआ, आप उसको कहिए कि तुम भावना करो कि मैं हिमालय हूँ, मैं हिमालय हूँ, अरे इस हिमालय को कोई लेगा फेंक देगा इधर उधर नाली में डूब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। भावना करो कि मैं भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ, क्या ऐसी भावना की जाए गलत। इसमें शिक्षा है कि मुनि को भावना करनी चाहिए, मुनि ही भावयत, क्या भावयत, यह भावना करे कि भगवान आकाश की तरह अव्यवच्छेद, भगवान में व्यवच्छेद नहीं है, मतलब सीमा नहीं है, परिच्छिन्नता नहीं है, और असंग व्याप्य संस्पर्श तो रहितम, व्याप्त कहते हैं जिनमें यह आकाश व्याप्त होता है उनके संग से रहित है, वो स्पर्श नहीं है उसका। बर्फ का टुकड़ा आकाश में लाएंगे तो आकाश ठंडा नहीं हो जाएगा, आग जलेगी तो आकाश गर्म नहीं होगा, कोई भी वस्तु हो उसको न तो आकाश छूता है न कटता है न बढ़ता है। इसी प्रकार ब्रह्म है, भगवान है, आत्मभावे न अपने मन के भाव से ये बात भावना करनी चाहिए। आत्मा मन मन, भाव मन विचार, आत्मभावे न समन्वय न, और समन्वय का अर्थ है कि वेद में जो बात कही गई है उसका अन्वय करके बढ़िया से समझ करके उन श्लोकों को, या गुरु के मुख से सुन करके मन में भाव उठता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम भाव से भगवान को महान मान करके उनकी बृहत्ता को की भावना करें, ब्रह्म की जो सब तरह से रूप गुण आदि में महान है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजम किसान जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनत, ब्रह्म माने भगवान कृष्ण। तो अपने मन के भाव, मनसी जो भाव तेन आत्मभावे न भस्तुम भावे, ये भावना करें कि भगवान इस तरह से है, भगवान सर्वव्यापक है, लेकिन व्याप्य वस्तु के गुण दोष से प्रभावित नहीं है। अब आकाश का उदाहरण लेकर के आप कहीं भी विचार कर सकते हैं, आकाश में पेड़ उगे हैं, पृथ्वी है, यह एक ही पृथ्वी नहीं है, अनंत कोटि लोक हैं, भरे पड़े हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण उपस्थित होते हैं, कभी गुब्बारा छोड़ते हैं, कभी बम पटकते हैं आकाश में, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसा आगे वर्णन आ रहा है, इस तरह से होता है। लेकिन न तो आकाश इन आकारों से कभी कटता है और न तो इनके संस्पर्श से युक्त होता है कभी, इस तरह भगवान, भगवान के भीतर ही यह जगत रचा जाता है। गीता में बारंबार भगवान कहते हैं कि मतस्थानि सर्वभूतानि, मेरे भीतर सभी जीव हैं, सब कुछ अनंत कोटि लोक प्राकृत शक्ति सब कुछ भगवान के भीतर है, लेकिन फिर भी भगवान आकाश की तरह इससे निर्लिप्त है। या भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तो यद्यपि देखने में लगता है कि वे प्राकृत जगत में हैं, घूम रहे हैं, प्राकृत आकाश में हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के प्राकृत संस्पर्श से सुनने उन पर कोई असर नहीं होता। यह भावना करनी चाहिए मुनि को ये भगवत तत्व विज्ञान। तो दो शिक्षा आकाश से मिली कि भगवान पर जब भी विचार करना हो, अपने मन में भाव उठे, तो यही देखना चाहिए कि भगवान आकाश की तरह सर्वव्यापक हैं, परंतु फिर भी भिन्न भिन्न वस्तुओं के आकार आदि से उनमें कोई परिच्छेद नहीं है, कटाव नहीं है, सीमा नहीं है। और इसके साथ ही साथ जितनी भी वस्तुएं आकाश में हैं, जैसे आकाश का उनसे कोई संस्पर्श नहीं है, वैसे भगवान में भी कितनी भी प्राकृत वस्तुएं उत्पन्न हो, कितना भी प्राकृत जगत रचा जाए, कुछ भी हो, भगवान कोई टच नहीं कर पाते हैं। ये शिक्षा है। ऐसे प्रहलाद महाराज ने भी भगवान की उपमा आकाश से दी है, छिद्रवत सब। वे कहते हैं कि हे असुर बालकों, तुम ये मत सोचो कि भगवान दुर्लभ है। वास्तव में भगवान सर्व सुलभ, यद्यपि भगवान सबसे महान है, लेकिन समस्त प्राणियों के लिए सबसे अधिक सुलभ। आकाश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आकाश के समान हमारे निकट कोई नहीं। कुछ लोग कभी कभी भावना करते हैं कि भगवान तो इतना बड़ा है और मैं तो तुच्छ जीव हूं, भगवान के साथ मैं कैसे संबंध कर सकता हूं, कैसे दर्शन होगा। भगवान बड़ा है तो बड़ा तो सबसे आकाश है। इस प्राकृत जगत में आकाश के भीतर ही सारे लोक लोकांतर है, सूर्य चंद्र पृथ्वी सब इसके भीतर, और फिर भी कितना स्पेस बचा हुआ है, कितनी जगह बची हुई आकाश। तो इतना महान आकाश हमारे लिए सुलभ, जहां भी जाते हैं वहां सुलभ। तो इस तरह आकाश की विशालता, अपरिच्छिन्नता और असंगता को देखकर भगवान में इन गुणों की भावना करनी चाहिए। नभस्तोम भावे। ठीक है, बैठिए, लेकिन बीच में आवृत्ति दही होनी चाहिए। तेजो वन्नमयैर्भावैर्मेघाद्यैर्वायुमेरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत् कालसृष्टैः गुणैः पुमान्। पुनः यहाँ अर्थ भगवान होगा। पुमान माने आदि पुरुष भगवान, कारणदक्षाय पुमान। पुमान शब्द से वही प्रसिद्ध है। ऐसे पुमान का अर्थ जीव भी होता है। तो एक बार जीव अर्थ लेंगे, लेकिन जीव अर्थ वास्तव में बैठता नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा हम लोगों के लिए करना ही ठीक नहीं। इसलिए भगवत परक अर्थ लेते हैं। नभः जदवत, जैसे तेज अप अन्नमय भावै, भाव माने वस्तु स्थिति। तेज का अर्थ है आग, और अप का अर्थ है आपका जल, और अन्न, अन्न का अर्थ है पृथ्वी। अग्नि, जल और पृथ्वी मय वस्तुओं से, ऐसी वस्तुओं से जिसमें आग, जल और पृथ्वी हैं, ऐसी विविध वस्तुओं से आकाश भरा हुआ है, विविध लोकों में, इस पृथ्वी पर भी। इसके साथ ही वायुना ईरित ही मेघाद्य ही, वायु के द्वारा प्रेरित मेघ आदि से एक घिरा रहा, मेघ आदि इसके बीच रहते हैं। मेघ मतलब बादल, और आदि मतलब धुआं, वज्रपात, वर्षा, कुहासा, कई तरह के वातावरण इस आकाश में होते हैं। लेकिन इन सबके द्वारा तेज अप अन्नमय भावय और वायुना ईरित ही मेघाद्य नभः जद्वत् न स्पृश्यते तद्वत् काल सृष्टे गुणैः पुमान् न स्पृश्यते। काल के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है, भगवान स्वयं ही करते हैं, लेकिन वे इस सृष्टि के गुण दोष से लिप्त नहीं होते हैं, कुछ भी उन पर प्रभाव नहीं होता है। जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं, वर्षा काल में कुहरा छाता है, जाड़े में ये धूल छाती है, कई तरह से, लेकिन आकाश फिर भी उनका स्पर्श नहीं करता। जीव परक भी और थोड़ा पढ़ लें। किंच अन्यत आकाश शिक्षितम कुटस्थस्य आत्मनो नागमा पाय देहादि संबंध इत्यर्थ। आत्मा कुटस्थ है, कुटस्थ का अर्थ होता है निर्विकार। तो निर्विकार आत्मा का आगमा पाई देहादि के साथ कोई संबंध नहीं, ये देह मिलते हैं और चले जाते हैं। वो आगम माने आने वाले और पाई माने जाने वाले, देह आने वाला है जाने वाला। आत्मा को देह मिलता है, परिवार मिलता है, बहुत से वातावरण मिलते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। अग्नि जल और पृथ्वी नए वस्तुओं से जो काल के द्वारा सृष्ट होती हैं, मतलब इन देह आदि से पुमा न अस्पृश्यता इति नभोवत संभवती इति, आकाश की तरह ये सोचना चाहिए कि आत्मा का इससे स्पर्श नहीं होता। लेकिन स्पर्श नहीं होता है जीव का, स्पर्श तो छोड़िए, वो अपने को ही देह मान करके जीवन भर जीता है। भूमि से, आग से, जल से संपर्क है, फंसा हुआ है जीव ने, इसलिए जीव के लिए यह अर्थ बिल्कुल ठीक बैठता नहीं। और न तो वो आकाश की तरह बड़ा है, परंतु एक माने में वो आकाश है कि इसको अनंत शरीर मिले होंगे अब तक और मिलेंगे, फिर भी उन शरीरों से वास्तव में टच नहीं होता है। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, जैसा है वैसा ही रहता है, केवल भावना भर इसकी बिगड़ती है और उसी भावना को शुद्ध करना है कृष्ण भावना के द्वारा, कृष्ण भावना लाना ही इसकी शुद्धि है। परंतु ये दोनों श्लोक भगवद महिमा के द्योतक हैं। आकाश का उदाहरण बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इस जगत की सृष्टि भगवान करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, जगत चलाने के लिए कितनी कितनी वस्तु पैदा करना क्या क्या, और भिन्न भिन्न विचार के जीव रचते हैं भगवान, जैसे असुर हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी कई प्रकार के लोगों की रचना करते हैं। परंतु किसी के भाव द्वारा या वस्तु द्वारा अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश इन पंच महाभूतों से बने हुए वस्तुओं से भगवान का कुछ भी स्पर्श नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक बार सृष्टि करके पालन करके और भगवान इसके बाद थक कर अहक कर गिर गए। जैसे आकाश से अगर मान लीजिए धूली से भर गया, तब कोई सोचे कि अब तो आकाश को साफ करना पड़ेगा तो गंदा हो गया, या कोहरा छा गया तो फिर आकाश को भी धोना पड़ेगा, या गर्म हो गया गर्मी के दिन में सूर्य के तेज से तब इसको ठंडा करना पड़ेगा। आकाश कभी गर्म नहीं होता, आकाश कभी ठंडा नहीं होता। आकाश एक अद्भुत चीज है वास्तव में, हम अपना हाथ ऐसे किए तो लगता है ना कि आकाश इतना कटा है ये कट गया है, लेकिन नहीं कटा और न तो हमारे हाथ का वो स्पर्श किया। जब प्राकृत वस्तु भी इस तरह से निर्लिप्त हो सकती है, इन आने जाने वाली अनित्य वस्तुओं से संबंध नहीं है आकाश का, तो फिर भगवान का क्या संबंध हो सकता है? भगवान कितने विलक्षण, तो भक्त को चाहिए कि वह इस तरह से आकाश को देख करके भगवान के इस गुण की स्मृति करे। न अस्पृश्यते, और जीव तो कोई थोड़ा सा काम करता है, आकाश के एक कोने को घेर लिया घर बना करके, तब उसी घर में ममता हो जाती है। और घर अगर गिर पड़े तो अब कहा जाए कि न अस्पृश्यते, और टच नहीं करता है तो ये तो बेकार ही, हमेशा वो इसी प्राकृतिक वस्तुओं में अहम अमेती करता रहता है। अतः भगवान की कहीं स्मरण करना चाहिए। ये जितनी वस्तुएं हैं काल सृष्टि, काल के द्वारा उत्पन्न की गई, जैसे जाड़े में कोहरा, वर्षा काल में बादल आदि, तो इसी तरह से भगवान काल के द्वारा सृष्टि करते हैं, अपने भीतर ही करते हैं, आत्मा नहीं, लेकिन फिर भी वे प्राकृत वस्तुओं के स्वभाव से कलुषित नहीं होते हैं, उसका स्पर्श उनको नहीं होता। पुमान मतलब कारणों दक्षाई भगवान परमेश्वर। समझ में आ गई बात ना? फिर हम पूछ सकते हैं कि किस गुरु से आप क्या सीखे आए? ये भाव है तो अपने से भावना करनी चाहिए, सोचना चाहिए। अब उदकात शिक्षितम आह, और जल से जो शिक्षा मिलती है वह देखिए। जितने गुरु हो गए, पृथ्वी वायु और आकाश, अभी तो तीन ही हुए, चौथे गुरु हैं आप। आप आप मन प में हलंत है, प पूरा नहीं है। आप जल, उसको आप या आप कहते हैं, जल। ऐसे देखिए क्या शिक्षा लिए, क्या लेनी चाहिए। स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस् तीर्थभूर्निर्णाम मुनिः पुनात्यपामित्रम् इच्छोपस्पर्श कीर्तनैः। स्वच्छत्वादिभिर्गुणैः उदकम् जगत् पुनाति इति तद्गुणः मया शिक्षिता इत्यः। अपने स्वच्छत्वादि गुणों से जल जीवों को पवित्र करता है, स्वच्छ कर देता है, अतः जल के गुण हमें हम सीखे हैं। हम लोग रोज जल से शुद्ध होते हैं। यदि जल ना रहे तो न तो दांत साफ होगा, न देह साफ होगा, न कपड़ा साफ होगा। जो भी थोड़ी बहुत सफाई है वो जल के कारण। तो जल है के गुणों को लेकर के सीख रहे कि मुनि कैसा होना चाहिए, भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए। स्वच्छ सुअच्छ, अच्छ माने अच्छा, और स्वच्छ माने सुअच्छ, बहुत अधिक अच्छा है। स्वच्छ का अर्थ है निर्दोष, जिसमें उसके स्वरूप के अलावा अन्य दोष न आया हो उसको स्वच्छ कहेंगे। श्रीमद् भागवतम में शुद्ध जल की तुलना भगवान के भक्तों के मन से की गई है बारंबार। महान मन प्रख्य पय सरस्वता, महान मन प्रख्य पय सरस्वता। वृंदावन के सरोवरों के जल का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं, तो कहते हैं कि महात्माओं के मन के समान शुद्ध जल में जब कोई भी बाहरी चीज न मिला हो तो उसको कहेंगे निर्मल, निर्दोष जल। इसी तरह से जब किसी साधु में, भक्त में भगवत भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामना, अन्य विचार यदि न हो तो उसको कहा जाएगा स्वच्छ, निर्दोष। मुनि के लिए बात बता रहे, और जल पक्ष में तो निर्दोषता निर्मलता आप समझ ही रहे। जल वास्तव में वसुदेव सिंह हेम है, मुंह पर हेम है, एकदम टोटल है मुंह है। ऐसे चीत बताता जल को अपने स्वरूप में जब होता है बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्दोष कहते हैं। जब बाहरी वस्तु उसमें पड़ जाती है तब उसका रंग दूसरा हो जाता है, रंग डालिए तो लाल हो जाएगा। ये भूमि परत भा ढाबर पानी जन जीवन माया लगता नहीं, भूमि पर गिरने पर जल ढाबर हो जाता है, गेरुआ रंग का जल हो जाता है, जैसी मिट्टी होती है वैसा हो जाता है। लेकिन अपने स्वरूप में वह बड़ा सुंदर होता है। तो इसी तरह एक भक्त को होना चाहिए, एक साधु को निर्दोष, दोष का एक कण भी उसके भीतर न ढुक पाए, न प्रवेश कर पाए, स्वच्छ पाए। और प्रकृतितः स्निग्ध, और स्वभाव से ही स्नेहवान होना चाहिए साधु को। स्निग्ध, स्नेह जिसमें हो उसको स्निग्ध कहते हैं। स्नेह का अर्थ है स्वभाव से ही स्नेह पूर्वक दूसरे का उपकारी होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे का उपकार करती है तो स्नेह से करती है, कोई सरकारी नियम नहीं बना है कि तुमको पालन करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए आप किसी होटल में जाएं और होटल में कोई नौकर आपको भोजन ला करके देता है, तो वह नौकर किस भावना से प्रेरित होकर देता है? मालिक उसको नियुक्त किया है, उसको वेतन देता है, तो सोचता है कि मैं ठीक से भोजन परसूंगा तो हमको वेतन मिलेगा, लेकिन उसके भीतर उस व्यक्ति के प्रति स्नेह नहीं होता है जो खा रहा है। परंतु जब माँ भोजन परोसती है, ये घर में और जैसे कोई पत्नी है भोजन परोसती है, तो उसके अंदर स्नेह होता है। पैसा कमाने के लिए होटल में नौकरी बजाने के लिए वो भोजन नहीं बनाती है ना परोसती है, स्नेह से चालित होती है। तो इसी तरह से मुनि योगी साधु व्यक्ति स्वभाव से ही स्नेहवान होते हैं दूसरे जीवों के प्रति। वे ऐसा नहीं कहते ये सब माया है, भागो छोड़ो, ये करो ये करो वो करो। स्वाभाविक ही स्नेह, जैसे जल, जल स्वभाव से ही बहने वाला स्वभाव का होता है, बहता है। जो बहे चिकना हो और बहे उसको स्निग्ध कहते हैं। आप जल यहां छोड़िए तो जल बहने लगेगा, इसको अनुगमन कहते हैं। तो सबके स्नेह से सेवा करना, खास करके गुरुजनों के प्रति अनुगामी होना, जीवों के प्रति अनुरागवान, गुरु के प्रति अनुगत्य, इसको स्निग्ध कहते हैं। ब्रुयो ही स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमाक, सहज प्रेम भाव सेवा। तो इस प्रकार का साधु होना चाहिए। और कैसे स्नेह हो उसके प्राणियों, उसमें प्राणियों के प्रति प्रकृति, तो जिसमें प्रकृति से ही स्वभाव से ही स्नेह है, किसी के सिखाने से बताने से नहीं। जैसे जल में, हरि बोल रामचरण दास, ठीक से बैठिए। जल को कोई सिखाता नहीं है कि इधर बहो इधर खाल है, है ना। आप केवल मुंह ही काट देते हैं, वो बहने लगता है, खाल देख करके, नीच भूमि देख करके बहने लगता है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक ही स्नेह होता है किसी दुखी के प्रति, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के प्रति, किसी अज्ञानी के प्रति, इसको ज्ञान देना चाहिए, इसको भोजन देना चाहिए, इसको कपड़ा देना चाहिए, इसको सुखी करना चाहिए, तो इसको स्नेह कहते हैं। वह किसी के बताने से नहीं, स्वरूप ही ऐसा साधु का होता है कि उसका चित्त द्रवित हो जाता है और दूसरे से स्नेह करता है। जैसे जल, जल अपने आप बहने लगता है खाल जमीन की ओर। तो इसी तरह से सज्जन को चाहिए कि वह दूसरे के प्रति स्नेह करे। माधुर्य, माधुर्य का अर्थ है सुख हेतु, सुख का कारण। असि प्रसिद्ध स्वामी जी इसको कहते मधुरा लापी। जैसे जल जब बोलता है तो बहुत मधुर बोलता है। अपने आप में जल बोलता नहीं है, लेकिन जब कहीं चलता है, खास करके निर्जर आदि में गिरता है, तो जल की आवाज बहुत सुंदर लगती है। उसे उद्वेग नहीं होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बड़ा सुंदर आवाज करता है। इसी तरह से साधु को जब बोलना हो तो बहुत मधुर बोले। धोखा देने के लिए मधुर नहीं, बहुत सुख देने के लिए दूसरों को मीठा बोले, गाली गलौज ना करे कभी। रे तुकार, गाली गलौज, कर्कस न बोले। जल जैसे मधुर बोलता है, मधुर आलाप करता है, इस तरह से उसका जो भी व्यवहार है, देखना है, सुनना है, चलना है, बिल्कुल मधुर होना चाहिए। और नृणाम तीर्थ भू, और मनुष्यों के लिए तीर्थ का स्थान, भक्ति के उपदेश से लोक पावन है, यह अर्थ। जल तो अपने आप में तीर्थ है ही, जल पक्ष में तो अर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। तीर्थ, तीर्थ का अर्थ तार देने वाला, जल ही वास्तव में तारता है। बड़े बड़े तीर्थ है जैसे गंगा जी है या बिंदु सरोवर है, राधा कुंड है, वो तीर्थ भी वास्तव में जलमय है, वह जल पावन करता है। और ऐसे भी हमारे चंपा कल का जल है या कुआं का जल है, यह जल हम लोगों को रोज रोज तारता है। जब सो करके उठते हैं हम लोग तो मुर्दा जैसे रहते हैं, लेकिन जल हम लोगों को पवित्र कर देता है, करता है कि नहीं? सवेरे उठी और कोई कहे कि नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ा तीर्थ भागवत है और भगवान का नाम है, यही तारेगा, और नहाइए मत, तो दो चार दिन में तो तर ही जाएंगे अस्पताल जाकर। तो वास्तव में तार रहा है जल। हम आंख धोते हैं, दांत धोते हैं, मुंह धोते हैं और कपड़ा धोते हैं, पीते हैं, वहां तो देख रहे हैं चारों तरफ का दृश्य, इसको नहीं देख कुत्ता आ रहा है। जल है कि वर्तन पर, जल के वृत्ति पर, कार्य पर हमें विचार करना चाहिए, किस तरह से दूसरों को साफ कर रहा है। हम लोग जल को लेते हैं उसी से कूला करना, दांत साफ करना, आंख साफ करना, सब कुछ साफ करते हैं, कपड़ा धोते हैं,